नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में मैं हूं आपके साथ विनय सक्सेना, और मेरे साथ तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलय नीरव जी। मलय जी नमस्कार।
नमस्कार,
मैं आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पीवी सिंधु मलेशिया के कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची। आईपीएल क्रिकेट में कल फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ज्योति सुरेख, वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय टिकड़ी ने तुर्की को कंपाउंड महिला टीम फाइनल तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत दिया है। एफआईएच प्रो लीग में भारतीय महिला टीम मेजबान बेल्जियम से 2-1 से हार गई है, और पुरुष हॉकी में ताजा समाचार मिलने तक भारत और बेल्जियम के बीच मैच जारी है। और राष्ट्रीय चैंपियन के कांस्य पदक विजेता अभिमन्यु लौरा ने शानदार खेल दिखाते हुए आज यहां पेरिस ओलंपिक के लिए मुक्केबाजी विश्व क्वालिफायर के 80 किलोग्राम भार वर्ग के पहले दौर में बुल्गारिया के क्रिस्टियन निकोलोव पर जीत दर्ज की। बैडमिंटन में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज मलेशिया के कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल फाइनल में पहुंच गई। सिंधु ने पहले गेम में हारने के बाद भी दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी थाईलैंड के बुसानन ओंग बामरूंगफान पर 13-21, 21-16, 21-12 से जीत हासिल की। कल फाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की झी यी वांग से होगा। वांग ने सेमीफाइनल में अपने ही देश की यी मैन झांग को 21-9, 21-11 से हराया। सिंधु का फाइनल में पहुंचना मलय जी एक शुभ संकेत है।
बहुत ही शुभ संकेत है पेरिस ओलंपिक्स के पहले, क्योंकि देखिए 2022 में सिंगापुर ओपन जीतने के बाद और फिर मैड्रिड स्पेन मास्टर्स पिछले साल रनर्स अप रहने के बाद कोई मेजर टूर्नामेंट में अभी तक सिंधु की जीत देखने को नहीं मिली, तो ये बहुत अच्छा कमबैक है सिंधु के लिए, क्योंकि आज भी अगर भारत पदकों की उम्मीद रखता है तो सिंधु से रखता है जब बैडमिंटन की बात चलती है, क्योंकि एक बार रजत और एक बार कांस्य, 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली सिंधु में गजब की रिसिलियंस है, वापस लौटने की जो क्षमता है वो कभी वो लगता है कि हर बार ये कह रही है कि तुम करोगे कल, चलो मैं आज करती हूं और हर मुसीबत को नजरअंदाज करती हूं, इस अंदाज में आगे बढ़ती हैं। आज भी जिस तरह से उन्होंने मैच उनका बुसानन से हुआ, तो अभी तक अगर आप पूरा उनका करियर देखें तो 18वीं बार बुसानन को उन्होंने हराया है, और एक बार हांगकांग में बहुत दिनों पहले की बात, मैं ख्याल से 2019 में वो उनको उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से हालांकि वो 5वीं वरीयता प्राप्त हैं इसमें, लेकिन उन्होंने 2 साल से कोई टाइटल नहीं जीती, कोई खिताब हासिल नहीं,
खराब दौर से गुजरते
खराब दौर से गुजरते के बावजूद और पहला गेम हारने के बावजूद 13-21 से हारने के बावजूद इस तरह से वापसी की, और देखिए ना 21-16, 21-12 पहला, दूसरा गेम 21-16, तीसरा 21-12, तो स्कोर लाइन बताती है सिंधु की वापसी की कहानी।
जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि कल शायद पदक सिंधु के हाथ रहेगा।
बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि अगर आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने वांगजी चाइना की जो है वर्ल्ड नंबर 7 है उनके साथ अगर आप उनके मुकाबलों को देखें जो आज तक उन्होंने जीते हैं और हारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हारी का सामना करना पड़ा है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार सिंधु जिस तरह के फॉर्म में वो दिख रही हैं और जिस तरह की एक जो हठधर्मिता खिलाड़ी में होनी चाहिए कि मैं तो यहां से हिलूंगी नहीं, वो हठधर्मिता जो उन्होंने दिखाई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगी।
अब बात करते हैं क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में दूसरे क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के 176 रन के जवाब में राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 139 रन ही बना सकी। कल फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मलय जी, सनराइजर्स पहुंच गई, केकेआर भी पहुंच गई। अब अगर हम दो टीमों की तुलना करें आपस में, बैट टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, फील्डिंग और बॉलिंग, आप किस टीम को ज्यादा बैलेंस टीम मानते हैं और एज किसको है?
देखिए, अगर आप फेवरेट्स की बात करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि कोलकाता नाइट राइडर्स फेवरेट हैं, मगर आप मैच वेन्यू देखिए, चेन्नई, जहां पर जो चेन्नई का जो वेदर कंडीशन है, वहां का जो मौसम है, उसमें शुरुआत में जब लीग दौर के मैच हुए थे और जो पिछले दो एक मैच हुए हैं, तो अगर आप तुलना करके देखेंगे तो ड्यू फैक्टर कभी रहा और कभी नहीं रहा। अब इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ड्यू फैक्टर कितना हावी होता है वहां पे। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पिन क्षमता जो है बहुत अच्छी है, उनके बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें कि पैट कमिंस ने जिस तरह से टीम को एक सूत्र में पिरोकर और एक समग्र रूप से एक ऐसी टीम का निर्माण किया है जिसमें कि किसी भी विधा में किसी भी तरह से, तो उनकी क्षमता को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। और एक बात और कि बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को भी हराया, और आगे की भी जो उनकी प्लानिंग है, अगर आपको मैं बताऊं कि आज वो प्रैक्टिस के लिए गई नहीं, उन्होंने कहा कि आज टीम को इंतजार करना चाहिए, आप आराम करना चाहिए, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं हमें। हालांकि उनका मैच अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था, कल ही हुआ था, परसों कल या परसों हुआ था। तो इस तरह से बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। और जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था और हराया है इस आईपीएल में भी, तो इस बात को में कोई शक नहीं, कहने में कोई इसमें बुराई नहीं होगी कि कोलकाता की टीम हमेशा से 20 दिखाई पड़ी।
लेकिन अगर हम बैटिंग को देखें, लीग के दौरान सब टीमों ने खुल के रन बनाए, पहले बल्लेबाजी करते हुए भी और दूसरी बल्लेबाजी करते हुए भी। अब जब हम क्वालिफायर्स में हम देखते हैं तो कोई भी पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 175 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी, और वो आंकड़ा चेज हुआ भी और नहीं भी हुआ। अब ऐसी स्थिति में जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी टॉस जीत के, उसके दिमाग में क्या चलेगा?
देखिए, पहला तो ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर सनराइजर्स हैदराबाद टॉस जीतती है तो पहले वो बैटिंग करना चाहेगी, और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स जीतती है टॉस तो वो पहले बोलिंग करना चाहिए, क्योंकि चेजर्स हर कोई हर टीम अच्छे चेजर्स नहीं होते।
जी बिल्कुल।
तो उस हिसाब से देखिएगा तो ये कहा जा सकता है, लेकिन फिर से मैं एक कहूंगा कि दो महीने से ज्यादा तक ये टूर्नामेंट चला है,
थकान खिलाड़ी में है,
खिलाड़ी में थकान है, और काफी मैच हो चुके हैं। चेन्नई के चिपॉक्स स्टेडियम में वेदर एक फैक्टर है, ड्यू फैक्टर है, मगर कुल मिलाकर आप अभी भी पूछे मुझसे तो स्पिन गेंदबाजों का दबदबा जो होता है वो देखने को मिला नहीं अभी तक इनकी टीम की तरफ से। हालांकि हैं बड़े बड़े नाम, और मुझे लगता है कि टॉस जीतने वाला कप्तान अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो उसका अपर हैंड होगा, इसमें कोई शक नहीं।
देखते हैं बोर्ड पे अगर
देखिए, मुझे नहीं लगता कि फाइनल है इसमें वो धुआंधार देखने को मिलेगा कि आप 270 और 280 रन बनाएं,
संभल के खेलेंगे।
वो यहां पे हर कोई संभल के खेलेगा, क्योंकि बड़ी मजबूत टीमें हैं जहां बॉलिंग की बात आप करते हैं। और एक और बात देखिए, जो एक 20 ओवर या 50 ओवर की क्रिकेट होती है ना, उसमें ऑलराउंडर्स की बड़ी भूमिका होती है। ये जो फिलिंग करने के लिए बॉलर्स लास्ट में आते हैं, एक दो ओवर डालते हैं और वो एक झटका देकर चले जाते हैं, ऐसा हमने देखा है कि सनराइजर्स की टीम
मैच का नक्शा बदल जाता है,
मैच का नक्शा बदल दिया उन्होंने। तो इस तरह से मुझे लगता है कि संभल कर खेलेंगे, और अगर विकेट अच्छा खेली और अगर रन बने जिस तरह से बनने चाहिए और जिस तरह से सारी टीमों ने सोचा कि बनेंगे इस तरह की विकेटों पर, तो अगर 210-220 रन कोई भी टीम बना लेगी तो दूसरी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगी उसको।
तो कल हम एक एक्साइटिंग फाइनल की उम्मीद करें,
बहुत बढ़िया फाइनल, ऐसा फाइनल नहीं जिसमें कि बॉलर की बखिया उधेड़ दी जाए गेंद के साथ साथ।
दूसरी ओर बिहार क्रिकेट संघ अगले महीने राज्य में सभी वर्गों, सीनियर, अंडर 23, अंडर 19, अंडर 15 में महिलाओं के लिए घरेलू टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बना रहा है ताकि महिला खिलाड़ियों को प्रतियोगिता का अनुभव मिल सके। बीसीए का महिला घरेलू टूर्नामेंट कराने के पीछे लक्ष्य, आगामी बीसीसीआई घरेलू सत्र 2024-25 के लिए महिला खिलाड़ियों को फिट बनाना है। बीसीए सभी वर्गों में महिला खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल 26 मई से पटना में आयोजित करेगा। ट्रायल सीनियर्स और सभी आयु वर्गों में बीसीए से संबद्ध 38 जिला इकाइयों द्वारा सिफारिश किए गए खिलाड़ियों के लिए होगा। अब बात करते हैं तीरंदाजी की। ज्योति सुरेख वैनम, प्रणीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय टिकड़ी ने तुर्की को कंपाउंड महिला टीम फाइनल में 226 से हराकर तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। भारत ने इस जीत के साथ खिताबी हैट्रिक पूरी की। भारत ने इससे पहले फ्रांस और इटली में भी स्वर्ण पदक जीते थे। अब बात करते हैं हॉकी की। एंटवर्प में खेली जा रही एफआईएच प्रो लीग हॉकी में भारतीय महिला टीम मेजबान बेल्जियम से 2-1 से हार गई। दूसरी ओर पुरुष हॉकी टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 1-0 से बेल्जियम के खिलाफ लीड बना रखी है। टूर्नामेंट का अगला चरण लंदन में खेला जाएगा। एफआईएच प्रो लीग 2023-24 के पहले दो चरण ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले गए थे। ओलंपिक सामने है मलय जी, और हॉकी का प्रदर्शन कुछ संतोषजनक नहीं नजर आ रहा है।
ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि धो दिया था ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को, 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला
5-0
से हारे। उसके बाद अब जब बेल्जियम से जो पिछला मुकाबला हुआ था भारत का, 4-1 से जो हार मिली थी, और जो अर्जेंटीना की टीम बहुत मजबूत टीम नहीं है, उससे जब मुकाबला हुआ तो
टाई
ब्रेकर में जीते और एक अंक हमें एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि टाई ब्रेकर में जो एफआईएच प्रो लीग का नियम है उसमें है कि आपको टाई ब्रेकर में जीतने आने पर ड्रॉ करने पर एक अंक, और अगर टाई ब्रेकर में जीते तो एक शूट आउट में जीते तो उसका एक अंक और आपको मिलता है। तो इस तरह से टीम बहुत लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ओलंपिक से पहले की जो तैयारी होती है उसमें टीम अपने हर खिलाड़ी को आजमाती भी है और कोशिश करती है कि उसको अच्छा खेलने का अभ्यास का अच्छा मौका मिले। लेकिन अगर आप देखें जो जिस तरह से ये मैच अभी हुए हैं, और 4-1 से जो भारतीय टीम की हार हुई थी पिछले मैच में बृहस्पतिवार को, तो उसमें एकमात्र गोल जो है अभिषेक ने किया था, वो भी 55वें मिनट में। आजकल की जो हॉकी है उसमें अगर आपने आक्रामक रुख अपनाने वाली टीम को हाफ लाइन से पहले ही नहीं रोका तो उसके बाद फिर आप खतरे की घंटी अपने आप बजाने लगते हैं। तो इस तरह से जो मैच हो रहे थे उसमें देखकर लग रहा था कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी भारत की टीम, और एक आध बार ऐसा लगा जैसे कि कहीं न कहीं तैयारी पूरी तरह से नहीं है। मगर ये कहने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि आज जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की है और बेल्जियम पर प्रेशर बनाए रखा है, पता नहीं अभी स्कोर क्या हुआ, लेकिन जब वो 1-0 से बढ़त ले ली थी भारत की टीम ने तो ऐसा लग रहा था कि वो पुरानी लय में आ गई है भारतीय टीम। और इस साल अगर आप देखें ना, बेल्जियम की टीम भी कोई ऐसी बहुत बड़ी टीम नहीं है,
अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं,
क्योंकि आयरलैंड से ये टीम हार गई थी। बेल्जियम की टीम आयरलैंड से हार गई थी, और उसके बाद फिर उसने बहुत ही जबरदस्त आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया भारत के खिलाफ। तो अब देखना यह है कि आज भारत अपनी जो बढ़त है उसको कहां तक, कब तक रोके रह पाता है। दो बातें हैं जो कि भारतीय पुरुषों और महिलाओं पर दोनों पर लागू होती हैं। एक कि हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें अवसर मिले और आपने गंवाए तो सिवाय रोने के कोई बात
कोई
फायदा नहीं, और दूसरा ये कि अगर आप के अवसर बनाने के अवसर आए और आप नहीं बना पाए तब भी आप हारेंगे। आज दोनों तरफ से भारतीय टीम अच्छा खेल रही है और महिलाओं की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।
दूसरी ओर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने बेल्जियम को शूटआउट में 4-2 से हरा दिया, जबकि निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर था। भारत को रविवार को ब्रेडा में जर्मनी से खेलना है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता अभिमन्यु लौरा ने शानदार खेल दिखाते हुए आज यहां पेरिस ओलंपिक के लिए मुक्केबाजी विश्व क्वालिफायर के 80 किलोग्राम भार वर्ग के पहले दौर में बुल्गारिया के क्रिस्टियन निकोलोव पर जीत दर्ज की। भारत ने दूसरे विश्व क्वालिफायर में 7 पुरुष और 3 महिला मुक्केबाज उतारे हैं। टेबल टेनिस में भारत के मानुष शाह और मानव ठक्कर ने रियो डी जेनेरो में वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने ब्राजील की घरेलू जोड़ी लुकास रोमांस्की और फिलिप डोटी को सीधे गेमों में 30-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष डबल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के लिलियन बार्डेट और जूल्स रोलैंड से होगा। और श्रोताओं, अब समय हमारे पास बचा नहीं है, आप इजाजत दीजिए स्पोर्ट्स कैन की टीम को। मलय जी धन्यवाद शामिल होने के लिए, नमस्कार।